दिल का स्नेह, वो तो तीन तरह के बताए, और आगे बढ़ो। बहुत पावरफुल पॉइंट्स क्या थे बोलो, आगे बढ़ो बोलो। सारा बाबा को दे दो तो अपने पास कुछ न रखो, ठीक है, संभव है ये? सारा दे दो बच्चों को क्या करोगे? माताएं बताओ, बच्चों भी दे दो उसके लिए काम कर दिया तुमने तो। अच्छा बताओ पावरफुल पॉइंट। दशरथ भाई बैठे हैं क्या? आगे आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पावरफुल पॉइंट, वेट, नहीं वो पूरा हो गया, मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा। वेट बोलो, वेट याद आया माताओं को? वेट क्या होता है? ये अंग्रेजी का शब्द है। वेट किसको कहते हैं हिंदी में? बोझ, ठीक है। माताओं ने इतनी अंग्रेजी तो समझ ली ना। तो एक बात पर हम चर्चा करेंगे, वेस्ट का वेट, वेस्ट माना व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, इनका दबाव, इनका वजन मन पर रहता है तो क्या हो जाता है? जैसे वेट वाला मनुष्य, भारी मनुष्य क्या नहीं कर सकता? जल्दी उधर मुड़ना हो, दौड़ना हो, चढ़ना हो, मुश्किल काम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पर, दिमाग पर वजन बहुत है, वो क्या नहीं कर सकते? बुद्धि की ड्रिल नहीं कर सकते, योग का सुख नहीं ले सकते, बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते। इस पे चर्चा करेंगे, किस किस चीज का वेट पड़ जाता है बुद्धि पर, उसको कैसे हटाएं। दूसरा, स्वयं को कंट्रोल करो तो राजा रानी बन जाएंगे, ठीक बात है। स्वयं को कंट्रोल करेंगे तो विश्व को कंट्रोल कर सकेंगे। जो खुद को ही कंट्रोल न कर पाए वो विश्व को क्या कंट्रोल करेंगे? बुद्धि कैसी चाहिए ड्रिल करने के लिए? छह भेद बताए बुद्धि के आज, छह तो मुझे भी याद नहीं है पर आप सुनाएंगे। महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, विशाल बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, एक और रह गया कोई? छह हो गए, पांच हो गए, चलो याद आ जाएगी। अब ये बुद्धि, महीन बुद्धि, महीन सूक्ष्म विशाल दिव्य रिफाइन बेहद की सोचना है, क्या है ये सब? बाबा हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बना रहे हैं, जिसको बाबा ने दूसरा नाम भी दिया, तुम्हारी बन गई है ईश्वरीय बुद्धि, अर्थात ईश्वर का ज्ञान उसमें भर गया है। बुद्धि में भरता है ज्ञान, ये विवेक शक्ति है, विवेक सारा बुद्धि में भरता है। देखो विवेक, विजडम कहते हैं अंग्रेजी में, जो कुछ हम सुनते हैं, हमने सारी मुरली सुनी, सारी तो याद नहीं रहेगी, किसी को भी नहीं रहेगी, उसका एक सार कुछ ना कुछ बुद्धि में समा जाता है, सूक्ष्म में जो ध्यान से सुनते हैं वो बन जाता है हमारा विवेक, विजडम, डिवाइन, दिव्य विवेक। तो ज्ञान लेते लेते हमारी बुद्धि में दिव्यता आ जाती है। ज्ञान और पवित्रता जिस बुद्धि में है वो बुद्धि हो गई दिव्य बुद्धि। ये सबसे बड़ी चीज है बुद्धि के लिए। सूक्ष्म महीन जो ज्ञान की बहुत गहराई में रहते हैं, हर चीज को गहराई से समझ लेते हैं, कैसे हम इस सृष्टि में आए थे, जब आए थे तो कैसे थे, कहाँ आए थे, इन बातों को जो गहराई से अनुभव कर लेते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म बातों को भी कैच कर लेती है, बेहद की विशाल बुद्धि। इसको हम इस तरह समझें, जिनकी बुद्धि हद में यानी तेरे मेरे में रहती है, जो स्वार्थ का सोचते हैं, मेरा ही नाम हो, मेरा ही गुणगान हो, मैं ही करूं, ये सेवा केवल मैं करूं, दूसरे नहीं, तेरा मेरा जब बुद्धि में भर जाता है, ये हद की बुद्धि हो गई। जब आत्मा इससे परे हो जाती है, विश्व कल्याण का सोचने लगती है, स्वार्थ भाव समाप्त होकर निष्काम भाव आ जाता है, तो बुद्धि विशाल बेहद की बनती जाती है। तो बाबा हमें एक सुंदर बुद्धि भी प्रदान कर रहे हैं। सब देख लें अपने को, हमारे पास वैसी बुद्धि है जैसी पहले थी या तेजस्वी बन गई है। बहुतों को हमने देखा, आपने भी देखा होगा, पढ़ाई में वो बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन ज्ञान में आते ही उनकी बुद्धि तेज हो गई। स्वामी विवेकानंद भी सेकेंड क्लास स्टूडेंट थे, वो कोई बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन जैसे ही इस मार्ग पे आए नाम पड़ गया विवेकानंद, विवेक जिसके पास है, तो बहुत विशाल बुद्धि हो गई उनकी, ज्ञान में बहुतों के साथ हो गया है। हल्की बुद्धि थी, यहाँ आ गए कवि बन गए, कई देखे हमने, माताएं गीत बनाती है गांव में, बनाती होंगी आप में से भी कई, गांव के जो लोग गीत होते हैं, जो गांव में माताएं गाती हैं, बिना पढ़ी लिखी माताएं गीत बनाती हैं, सारा याद भी रहता है उन्हें बाबा के आने का, वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे गीत गाती हैं। कवित्व उभर गया। तो हमारी बुद्धि जितनी बेहद की होती जाएगी, हमारे अंदर की जो योग्यताएं हैं, जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, वो जागृत होती जाएंगी। ये हमने बहुतों को देखा, बहुत साधारण लोग, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कई योग्यताओं से संपन्न हो गए हैं, तो ये ज्ञान और योग के द्वारा बुद्धि रिफाइन बनती, रिफाइन माना स्वच्छ, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं रहती। तो हमारा एक लक्ष्य हो जाना चाहिए अब, बुद्धि को स्वच्छ कर लेना। लेकिन ये दूसरे के हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में है। ठीक बात है या नहीं? हमने अपनी बुद्धि में क्या भरा है? दूसरों के अवगुण भर लिए, ईर्ष्या द्वेष भर ली, तेरा मेरा भर लिया, परचिंतन परदर्शन भर लिया, तो ये बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी। और जो बुद्धि स्वच्छ नहीं है वो स्थिर नहीं होगी। तो ऐसी आत्मा कभी भी योगी नहीं बन सकती। इसलिए बाबा का एक महावाक्य है, जब से मैंने सुना था तब से मुझे नोट हो गया था, बुद्धि में भी और डायरी में भी, तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करना। बुद्धि स्थिर उनकी नहीं होगी जिन्होंने उसमें ये गंदगी भर ली है। चेक करेंगे सभी, सुनेंगे नहीं केवल, हमारी बुद्धि में ईर्ष्या नफरत तो नहीं बैठ गई है? क्या क्या बैठता है बुद्धि में? अब तो बुद्धि चलेगी आपके, चलाओ, बुरा क्या क्या बैठता, अच्छी की बात नहीं कर रहे, बदले की भावना, क्रोध, पास्ट की कुछ चीजें बैठी रहती हैं, पास्ट के कुछ संस्कार बैठे रहते हैं, देखो एक बहन ने आज फोन किया, उसको डिप्रेशन हो गया है। कन्या बेचारी नेट पे ढूंढने लगी कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। आजकल ये भी तो नई बीमारी है ना, बीमारी है ये। नेट पे ढूंढते ढूंढते उसको उसका उसको पकड़ में आ गया ओसिड। ओसिड भी एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें मनुष्य सारा दिन हाथ धोता है, सारा दिन नहाता है, जब तक टंकी खाली ना हो जाए, बच्चों के लिए पानी खत्म बचे नहीं तब तक वो नहाती रहती हैं बहनें। माताओं को ज्यादा होती है ये, हाथ इतना धोती हैं एक साबुन रोज और स्किन खराब, पर धोती रहती हैं। तो ओसिड पढ़ लिया उसने, अब उसके दिमाग में ओसिड छा गया। आज वो बता रही थी, ओ पता नहीं एक्स था या सी था, आई डी, एक तो एसिड होता है, ये ओसीडी ओसिड। कहा ये हट ही नहीं रहा, योग में बैठते चलते फिरते आंखों के सामने बुद्धि में ओसिड ओसिड, क्या करूं। अब सोचो डॉक्टर के पास दवाई है इसकी। तो ये जो नेट पे सर्च करते हैं बीमारियों का इलाज, फिर डॉक्टर क्या करेंगे बेचारे, इसमें बहुत गड़बड़ होती है। ये गलती कोई ना करे कि नेट पे देख के दवाई खाने लगे, ये गलती नहीं करना है। डॉक्टर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है, अलग ही चीज है। मान लो डॉक्टर ने आपको बता दिया लौकी का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हो तो जाता है, पर हो सकता है आपको वो सूट न कर रहा हो, कफ बना दे, ठंडा कर दे, नुकसान कर दे। तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के बिना ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है या नहीं। तो बुद्धि में एक चीज और रह जाती है, पास्ट का दबाव, बीती बातों का दबाव। बीती बातों को भर लिया जाता है बुद्धि में तो बुद्धि पर वेट आ जाता है, दबाव आ जाता है, वजन रहने लगता है, तो हम उड़ नहीं सकते। योग में उड़ान नहीं भरी जाएगी, बुद्धि स्लिप होती रहेगी, भटकती रहेगी, थोड़ी देर स्थिर होगी 5-7 सेकंड, फिर भटक जाएगी। इसलिए अच्छे पुरुषार्थियों को पास्ट के चिंतन से मुक्त, और पास्ट की कोई बातें दिमाग में रख ली हो सदा के लिए उससे भी मुक्त होना है, दूसरों के लिए भी नहीं रखना है। साथी जो होते हैं ना आपके, पति ने पत्नी के लिए, पत्नी ने पति के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो आपका सर्किल होता है उसमें किसी के लिए कोई बात बुद्धि में रख ली, मान लो ये रख लिया, ये तो है ही ऐसा। और ऐसा सोचने वाला मनुष्य अपने को बहुत समझदार समझता है कि मैंने ठीक समझ परख लिया मैंने इसको, ये तो है ही ऐसा, बदलेगा नहीं। और बाबा क्या कहते हैं, बुरी चीज अंदर रख ली, श्राप देने वाला संकल्प रख लिया, जो दूसरों को श्राप देगा उसको वरदान मिलेंगे कभी नहीं। ऐसी कुछ गलत चीजें बहुत आत्माओं ने अपनी बुद्धि में रख ली हैं, वेट पड़ रहा है, वो चीजें प्रसन्न नहीं रहने देती, बुद्धि को स्वच्छ नहीं होने देती। तो बुद्धि पहले ही भरी हुई है, बाबा कोई सुंदर बात सुना रहा है, वो साथ साथ बाहर, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्लियर है ना सभी भाई बहनों को। इसलिए बाबा के सूक्ष्म ज्ञान को बुद्धि में समाने के लिए स्वच्छ बुद्धि की आवश्यकता है। बहुत ध्यान देना है सबको, स्वयं पर, दूसरों पर नहीं, स्वयं पर ध्यान देना है। हम बाबा से बहुत कुछ लेने आए हैं और वो सब कुछ भरता है हमारी बुद्धि में। खजानों को धारण करने की जगह बुद्धि है, मन में शक्तियां धारण होती हैं, बाकी सभी खजाने बुद्धि धारण करती है। तो करने हैं या नहीं, भगवान के खजाने, उसके वरदान छोटी बात नहीं है। इसलिए बुद्धि को खाली करेंगे गंदगी से। हर एक को वर्क करना है, इस पे होमवर्क है ये सब का। अच्छी तरह सोच ले हमने अपनी बुद्धि को किन किन चीजों से भर लिया है। वरदानों के लिए जगह है उसमें, ईश्वरीय खुशियां भर जाएं उसकी जगह है बुद्धि में। ज्ञान रतन जो बहुत बड़ी चीज है, जिससे हमें विजडम मिल रही है, विवेक मिल रहा है, उसके लिए जगह है। या ईर्ष्या द्वेष नफरत तेरा मेरा, इस गंदगी से हमने अपनी बुद्धि को भर के पूरा कर लिया है। जो लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, जो कहते हैं हमें खुशी नहीं रहती, जो कहते हैं चित्त में शांति ही नहीं है, मन बहुत भटकता है, ये एक की कहानी नहीं, ये करोड़ों की कहानी है। और संसार में जाएं तो 95% लोगों की यही कहानी है दुनिया की। बुद्धि में गंदगी भर ली है और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ करे। ठीक बात है या नहीं? नहीं तो हम अपने को बुद्धिमान नहीं कहेंगे। बुद्धिमान वही है जो बुद्धि को स्थिर करना जानता हो। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, वेट बढ़ता है बुद्धि में। वेट बढ़ता है तो बुद्धि को मोटा कर देता है। पढ़ाई में सबने देखा होगा, खुद भी और आप सबने अपने बच्चों की बुद्धि, किसी की बुद्धि मोटी रहती है, ग्रहण ही नहीं करती पढ़ाई को, रटाते रहते हैं टीचर भी माँ बाप भी, फिर भूल जाता है। रटना तो एक बहुत छोटी चीज है, समझ लेना किसी चीज को वो बड़ी चीज होती है, लेकिन बच्चों को तो रटाया जाता है। तो बुद्धि पे वजन न पड़ रहा हो, जिम्मेदारियों का वजन, घरों की जिम्मेदारी तो सब पे होती है ना, माताएं तो सेवा में आ गई हैं। कौन कौन सेवाधारी बैठे हैं? सारी माताएं सेवा में। इतनी अच्छा, तुम भी सेवा करते हो, तुम क्या करती हो? तुम भी अच्छा, सच। चलो भेलेगा नहीं तो थाली उठा के तो देगा तवे तक। ठीक ठीक अच्छा। तो देखो आप सभी बहने माताएं घर छोड़ के आ गए ना, घर छोड़ना सहज काम थोड़ा ही होता है एक दो मास के लिए। कई लोग तो छोड़ ही नहीं पाते, ये काम है ये काम है ये काम है। कई माताएं कहती हैं हमारी भैंस तो हमारे लिए हमारे बिना दूध ही नहीं देती। भैंस का बंधन, गाय का बंधन, हमारे बिना तो ये काम होता ही नहीं। लेकिन आप सब इतनी 100 से ज्यादा माताएं दिख रही हैं, सब सेवा में आ गई, बहुत अच्छी बात है, इससे भाग्य बनता है। तो जिम्मेदारियों का क्या किया? बाबा को सौंपा है। वाह कितना अच्छा आपका बाबा, तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा यही कहता है सब कुछ मेरे हवाले कर दो और क्या बन जाओ? बेफिक्र बादशाह। अब ये बहुत गहरी प्रैक्टिस है, बहुत गहरी, छोड़ा नहीं जाता, मुश्किल काम है। बाबा ने तो बिल्कुल अच्छे शब्द उच्चारण किए, आज बार बार किए हैं। जब बाप ऑफर कर रहा, ऑफर समझ गई थी बहने, जब वो खुद कह रहा है दे दो ना मुझे अपनी चिंताएं, अपनी बाधाएं, अपनी जिम्मेदारियां, क्या होगा मेरे बच्चों के साथ। कितनी माताओं की कहानी हो गई, कोरोना में फादर चला गया, ज्ञानी माताएं भी परेशान हुई, अब बच्चों की पालना कौन करेगा? कौन करेगा? करेगा या नहीं? लेकिन कब करेगा? जब उसको अर्पित करेंगे। बिना अर्पित किए थोड़े उसकी पालना होगी। तो सभी को दो चीजें याद रखनी चाहिए, हर आत्मा अपने भाग्य को लेकर ही जन्मी है। हम थोड़ा ही उन्हें खिला रहे हैं, वो तो अपने भाग्य को लेकर ही आपके घर में आई हैं। हो सकता है उनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ हो, वो आपकी भी पालना करने लगे, छोटे भी। भाग्य बहुत बड़ी चीज होता है, एक ये बात याद रखनी है। दूसरा, बाबा बाबा कहते हैं ये बात, जो सारे संसार को खिलाने वाला है। पिछली मुरली में था ना ब्रह्मा भोजन की बात, तुम सब कहते थे भगवान खिलाता है। जो सारे संसार को खिलाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा? खिलाएगा है नहीं? तो ये जो बोझ आता है दिमाग पर, इसको हटाना है। बाबा से ऐसा गहरा नाता जोड़ लें सभी, केवल भगवान नहीं है वो हमारे लिए, अब हमारा है, हमारा। वो भी हमारा बहुत ख्याल करता है, केयर करता है। केवल हम अपने को उसके हाथों में सौंपना सीख लें, बाधाएं सभी समाप्त हो जाएंगी। अब बहुतों का हुआ केस कोरोना में, नौकरी चली गई। ये तो बहुतों को हुआ कि धंधे ठप रहे, दुकानें बंद रही, बिजनेस बंद रहे। अब सोच तो चलेगा, कहने से तो नहीं होता कि नहीं सोचो, सोच चिंता तो होती है। लेकिन बाबा के कुछ ऐसे बच्चे भी थे, मस्त रहे और जब खुलेगा ठीक है, फिर दुकान खोल देंगे, बिजनेस चालू करेंगे। जब तक नहीं है बाबा देता रहेगा सब कुछ, उसने बहुत कुछ दिया है। उनके शब्द ही ये हैं, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, आगे भी देता रहेगा। तो ये भावना, ये समर्पण भाव हमें बोझ मुक्त करता है। लेकिन हमें स्वयं ध्यान देना है, व्यर्थ संकल्प, ज्यादा सोचने की आदत न हो। ज्यादा सोचने वाले हमेशा बोझिल रहते हैं, फरिश्तेपन की अनुभूति नहीं होगी। जब हम योग कराते हैं तो कहते हैं चलो अब सुख संवतन में चलो, हम 5 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं, अब ये करो, कहते हैं अभी तो पहुंचे ही नहीं, जल्दी ना करो, अभी तो पहुंचे ही नहीं हम, ट्रेन की स्पीड धीमी है, लोकल है। तो क्यों नहीं पहुंचे? व्यर्थ का दबाव है। नहीं तो 1 सेकंड की बात है ना, मैं आपको कहूं आप यहां बैठे हो, मन से बाबा के कमरे में जाकर बैठो, कितनी देर लगती है? सोचते हैं क्या कुछ ज्यादा? यहां है वहां है, ऐसे ही सुख संवतन में, परम धाम में, सेकंड का काम है। लेकिन ज्यादा सोचने की आदत व्यर्थ को बढ़ाती है, बुद्धि स्थिर नहीं होती, और ये छोटा सा अभ्यास भी देर लेता है, समय ले लेता है। तो ज्यादा सोचने की आदत, ये पक्का समझ लें सभी, व्यर्थ आपे ही नहीं चलते, व्यर्थ को हम चलाते हैं, चलने देते हैं, हमारी आज्ञा से ही चलते हैं वो। इसलिए जिस व्यक्ति को ये अवेयरनेस है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस है, पता है कि व्यर्थ चल रहा है। आप सब देख सकते हैं, बहुतों को पता नहीं होता कि व्यर्थ चल रहा है, जब घंटों बीत जाता है तब पता चलता है बहुत व्यर्थ सोच लिया, दिमाग भारी हो गया है। पता चल जाए कि व्यर्थ सोच रहे हैं तो जल्दी उससे मुक्ति का भी सोच लेंगे। अच्छे संकल्पों के द्वारा उसको खत्म करना है। हमें एक ऐसी स्थिति बनानी है कि हमें व्यर्थ संकल्पों से युद्ध न करना पड़े, उनको छोड़ने का प्रयास न करना पड़े। हमारा मन, हमारी बुद्धि, बाबा के ज्ञान से जो श्रेष्ठ संकल्प हमें मिल रहे हैं उसमें लग जाए, बस वापिस हट जाएगा। क्योंकि वो चीजें हमारी नहीं है, वो तो खाली हम हो गए, वैक्यूम कर लिया हमने, खालीपन, तो आ गए हैं व्यर्थ। हम बुद्धि को, मन को संकल्पों से, सुंदर संकल्पों से भर के रख दें, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो व्यर्थ बोल का भी वेट खत्म करना, व्यर्थ बोलने से अपने ऊपर तो वेत आता ही है, लेकिन ज्यादा आ जाता है दूसरों पर, है या नहीं? हमने किसी को बुरा बोल दिया, हम तो खाली हो गए और वो भारी हो गया, तो ये बोझ भी हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए व्यर्थ बोल से भी बचना है, क्योंकि व्यर्थ बोल से हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। देखो, व्यर्थ बोल मनुष्य के तब बहुत चलते हैं, मन में क्रोध हो, मन में दूसरे के लिए बुरी भावनाएं हो, पहले से ईर्ष्या हो, तो बुरे वचन निकलेंगे। इसको हटाना है। ज्ञान मार्ग पर हैं, साधनाओं के मार्ग पे हैं, तो उन चीजों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है जो इसमें बाधक हों। हम रोज नहीं करते क्या? हमें पता हो ये चीज हमें नुकसान करती है, फिर भी खाते रहेंगे क्या? उसको हम छोड़ते हैं, भाई नहीं, हमें नहीं खानी है, चीज नुकसान करेगी। जो चीज हमारे इस रूहानी मार्ग पर नुकसानदायक है, उन्हें भी हटाते चलें, सहज भाव से हटाते चलें, और व्यर्थ कर्म उसका बोझ सबसे ज्यादा होता है। बाबा के महावाक्यों में ये बात सभी ने सुन ली होगी, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, उनका योग नहीं लगता। जो सूक्ष्म विकर्म बहुत करते हैं रोज भी, उन पर बोझ आ जाता है, मन पे दबाव रहता है, उनका भी योग नहीं लगता। इसलिए हमें अब अपने को स्वच्छ करना है, हल्का करना है। इसलिए व्यर्थ संकल्प बोल और व्यर्थ कर्म, तीनों से जितना हम अपने को बचाएंगे, योग पावरफुल लगेगा, सुख मिलेगा, विकर्म हल्के होते जाएंगे, फिर योग और अच्छा लगेगा। जितने विकर्म नष्ट होंगे, योग पावरफुल होगा, खुशी बढ़ती जाएगी, संस्कार बदलते जाएंगे। जिनके संस्कार नहीं बदल रहे हैं, कारण यही है कि योग नहीं, तो विकर्मों का दबाव कम नहीं हो रहा है। इस दबाव को हमें हटाना अवश्य है, नहीं तो परिस्थितियां हटाएंगी। अभी देखो कोरोना में क्या हुआ, हमें तो एक ने सुनाया, कहीं वो बड़े हॉस्पिटल में था कोरोना ग्रस्त, कहा डेड, जो लोग डेड हो जाते थे दिन में वो उन्हें नहीं निकालते थे, रात को 12 बजे के बाद लपेटा हुआ है, सब भूत से बन जाते थे ना, किट पहनाई हुई है, रात को 12 बजे के बाद मेरे सामने से डेड बॉडीज निकल रही हैं, 20 निकल गई, मैं देख रहा हूं। अब नींद आएगी या नहीं उसके बाद? कहा नींद ही नहीं आती थी, संकल्प एक ही होता था कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो बीमारी तो अलग। बेचारा ठीक होके आ गया, मेरे को फोन इसलिए किया था, मेरे अंदर डर समा गया है, इसको कैसे निकालूं? बिल्कुल नेचुरल सी बात है, रोज 20-25 डेड बॉडी आगे से निकलती दिखाई दे, कहां ले जा रहे, ट्रक में डाला और फेंका है कहीं भी, गड्ढों में दबा दिया, खत्म कर दिया, तो सजाएं हो गई ना, ऐसी सजाओं से फिर सफाई होगी, डर भी और अपना कोरोना भी। देखो कैसी दुविधा, जिन बच्चों से या पति पत्नी माँ बाप से मोह है, किसी को देख ही नहीं सकते, कोई पूछने नहीं आ सकता क्या हाल है तुम्हारा, कैसी दुविधा हुई थी। मनुष्य के सामने उसके प्रियजन हो तो भी उसको थोड़ी तो शांति रहती है ना, भले ही अंत में बाबा के अलावा उनकी याद रहे, फिर भी तो शांति तो रहेगी, लेकिन अंत में बाबा की याद कितनी रही वो तो वही जाने। तो हम ऐसी स्थिति बनाएं अभी से कि हमारा बुद्धि योग स्थिर हो, ये सूक्ष्म जो विकर्म होते हैं इनसे बचे। हमें अपने पर कंट्रोल करना है, अपने पर माना सोच ले, मैं नहीं, कुछ प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, ये इंग्लिश शब्द है, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं ना, भावनाओं में मनुष्य को क्रोध आता है, भावनाओं में मनुष्य को फीलिंग आती है, ज्यादा इमोशनल है मनुष्य, भावनाओं भावुक है, रोना आता है, फिर संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो स्वयं पर कंट्रोल माना पहला लक्ष्य लेंगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल, सब काम करेंगे इस पर। हम अपने क्रोध पर कंट्रोल रख पाए हैं, वासनाओं को कंट्रोल किया है, फिर कर्मेंद्रियों के रसों को कंट्रोल किया है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए बाबा ने एक ही लाइन में राज खोल दिया, खोल देते हैं। जो स्वयं पर राज करेंगे वही विश्व पर राज करेंगे। विश्व पर राज में बहुत बड़ी चीज आ जाती है, प्रकृति पर भी राज करेंगे। प्रकृति पे राज करना छोटी चीज थोड़ा ही है, मूल्यों में साकार मूल्यों में आता रहता है। ध्यान से सुन लिया करना, विनाश की बात ज्यादा आ रही है। ऐसे तूफान चलेंगे, सब कुछ नष्ट करते चले जाएंगे। आज जो मूल्य मैंने रिकॉर्ड की उसमें ये लाइन थी, ऐसे तूफान होंगे सब कुछ नष्ट करते चले जाएंगे। तो उसमें कष्ट भी बहुत होगा, क्योंकि एक झटके में तो मृत्यु नहीं होती ना, उसमें कष्ट होता है। उड़ीसा में तूफान आया था, एक हंसी की बात लोग सुनाया करते थे। उड़ीसा में कई साल पहले बहुत तेज हवाएं चली थी, तूफान, उसमें ट्रक भी उड़ गए थे, कारें तो उड़ के पेड़ों पर टंग गई, स्कूटर्स का तो पता ही नहीं चला वो कहां चले गए। तो एक व्यक्ति था, उसकी बकरी बाहर बंधी हुई थी, अभी हवा चली थी, उन्हें सोचा इसको अंदर ले लूं, बकरी भी उड़ गई, वो भी उड़ के कहां चला गया पता ही नहीं चला दोनों का। तो उसके घर वालों ने किसी को निकलने ही नहीं दिया कि दो तो गए, अब बाकी को तो बचा लो, पता ही नहीं चला कहां चले गए। 290 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली, थोड़ी देर चली, नष्ट कर गई सब कुछ। तो कितना कष्ट होता है जिसकी बकरी भी गई और बाप भी गया, वो बेचारे जिंदे होंगे तो भी कितना कष्ट पाएंगे। तो हमें प्रकृति पर भी राज कर लेना होगा। जो इस प्रकृति पे राज कर लेंगे, कौन सी प्रकृति? देह, इसमें कर्मेंद्रियां, उनको ये संपूर्ण प्रकृति भी साथ देगी। हवाएं तेज चलेंगी, जल विनाश करेगा, अग्नि बहुत कुछ नष्ट करेगी, तीन तत्व। लेकिन जो आत्माएं प्रकृति के मालिक बन जाएंगी, उसको ये तीनों तत्व भी मदद करेंगे। बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कह दी, मैं सदैव याद दिलाता हूँ, याद भी करता हूँ, नोट कर लेना सभी। माताएं तो डायरी रखती नहीं, बुद्धि में नोट कर लेना। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। मन में रिपीट कर लो जरा, जो आत्माएं अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगी, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। तो हमें स्वयं के राजा बनना है, बनना है तो देह भान से सेकंड में न्यारे होने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। जो देह भान से सेकंड में न्यारे हो जाएं, मानो उन्होंने प्रकृति को जीत लिया, देह के प्रभाव को, उसके आकर्षण को समाप्त कर दिया है। तो दो अभ्यास करेंगे, बहुत सहज समझ लेंगे इस बात को। सोने से पहले कर लेना, सवेरे उठकर कर लेना। जैसे कि हमारा देह लोप हुआ, बच गई मैं निराकार आत्मा कुछ क्षणों के लिए, फिर मैं निराकार आत्मा पहुंच गई परम धाम, कुछ देर वहां, फिर मैं आत्मा आ गई देह में, फिर चली गई परम धाम। ये ड्रिल है, इसको करने से देहभान धीरे धीरे छूटता जाएगा, हम प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, कर्मेंद्रियों के रसों पर हमारी विजय हो जाएगी, आप ही हो जाएगी, हमें करना नहीं पड़ेगा। एक एक कर्मेंद्री के रस को जीते बहुत समय लग जाएगा, आंखें कुछ देखें नहीं इधर उधर की चीज, लंबी कहानी हो जाएगी, सारा दिन तो दिखता है। जीव का रस खत्म हो जाए, लंबी यात्रा हो जाएगी, मुख के बोल कंट्रोल हो जाएं, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, कानों से बुरा न सुने। लेकिन अगर आत्मा की ये ड्रिल करेंगे तो आत्मभिमानी स्थिति का सुख इतना ज्यादा मिलेगा कि कर्मेंद्रियों का सुख फीका लगने लगेगा, आपे छूट जाएंगे हम। तो आत्मा बिल्कुल इस देह की मालिक बन जाए। दूसरी प्रैक्टिस है इसी की, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। इसको बहुत सहज सभी समझ लें, अपने को रोज एक बार कम से कम ये पावरफुल संकल्प देना है कि मैं मन और बुद्धि की मालिक हूं, तो मालिक बन जाएंगे। नहीं तो ये दोनों हमारी मालिक बनी हुई हैं, लेकिन हम अपने को याद दिलाएंगे तुम मन बुद्धि के मालिक हो। बस जो कुछ हम याद दिलाएंगे स्वयं को वो हम बन जाएंगे। सबको याद रखना है ये मूल मंत्र बाबा का, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो अच्छी स्मृतियों में एक स्मृति ये भी है, मैं आत्मा इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। जैसे अपने मन को समझा दे, हे मेरे मन तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते, हे मेरी बुद्धि तुम मेरी आज्ञा के बिना स्वयं में कुछ नहीं भर सकती, तुम सोने का बर्तन हो, तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम एक श्रेष्ठ आत्मा की बुद्धि हो, तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं अपने में भरना है। ये बात करें अपने मन बुद्धि से तो बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे, और कुछ ही दिनों में ये पता चलने लगेगा हमें कि मन बुद्धि हमारी बात मानने लगे हैं, वो हमारे आदेश को सुनने लगे हैं, तो एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो स्वयं के राजा बनना है, अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल, भावनाओं पर, उसमें विशेष क्रोध फीलिंग रोना, तीन चीजें ले ले, उन पर कंट्रोल, तब हम आने वाली घटनाओं को साक्षी होके देख सकेंगे। नहीं तो आने वाली घटनाएं ऐसी हैं, लोग रो रहे होंगे और हम भी बैठ के रोने लगेंगे, तो उनका रोना खत्म कौन कराएगा? मृत्यु बहुत होंगी, माताएं तो रोने भी जाती हैं, खास भाइयों को नहीं बुलाते, है ना? क्यों भाई ये रसम, दशरथ भाई ये रसम क्यों? माताओं को ही बुलाते हैं, घूंघट करके बनावटी भी रोती रहती है, हूं करके मैंने देखा था बचपन में, पता चलता था ये रो थोड़ा ही रही है। तो ऐसा रोने की आदत नहीं डाल देनी है कि किसी भी सीन को देख ही ना सके, तब हम रोतों को चुप करा सकेंगे, उनके आंसू पहुंच सकेंगे, तब हम उन्हें वाइब्रेशंस दे सकेंगे। तो इन सब के लिए बहुत अच्छी साधनाओं की जरूरत है, केवल योग की साधना नहीं। दूसरी साधना कौन सी होती है? ज्ञान के पॉइंट्स को प्रयोग करके अपने को नियंत्रण में रखना, ये भी साधना है। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देना, ये भी बहुत बड़ी साधना है। और ये जबरदस्ती नहीं होती कि हम बैठ जाएं, व्यर्थ चलने नहीं देंगे, ड्रामा का ज्ञान है हमारे पास, उसको यूज करते हैं, उसको याद करते हैं, तो अनेक संकल्प हमारे शांत हो जाते हैं। बाबा मेरे साथ है, ये पॉइंट हम याद करते हैं तो अनेक संकल्प हमारे शांत हो जाते हैं। बाबा ने कहा मुझे बोझ दे दो, अगर ये याद रहने लगे तो हम बोझ दे देंगे, परंतु समय पर ये याद रहता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी अच्छी बातें अपने पास नोट करके रखनी है, जिनको हम पढ़ते रहें, उनको यूज करते हैं। हर एक के पास कम से कम 16 पावरफुल पॉइंट, कम से कम सुंदर बातें जो हमें अचल अडोल करें, जो हमें बल दें। मैं एक ही शब्द बोलूंगा, जो मूर्छित स्थिति को जागृत कर दें, सुरजीत कर दें। ऐसी कम से कम 16 पॉइंट, ज्यादा भी हो सकती हैं, 40-50 भी हो सकती हैं, जरूर अपने पास लिखें, उन्हें पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो वो स्मृति में रहेंगी, और स्मृति में रहने से वही होगा, हम उनका स्वरूप बनते जाएंगे। तो बहुत अच्छी साधना ये सबको करते चलना है, अपने राजा बन जाना है। वेट कुछ ना हो दिमाग पर, वेट घटाने आए हैं ना, शरीर का ही नहीं आत्मा का, घटाने आए हैं, जो बढ़ गया उसको भी कम करने आए हैं। तो ज्ञान का यूज, स्वमान का यूज, योग अभ्यास। मधुबन में आप सब रहते हैं एक सुंदर माहौल में, मधुबन जैसा स्थान तो दुनिया में और कोई नहीं है। दोनों जगह के वाइब्रेशन, हम ज्ञान सरोवर में अब रहते हैं, यहाँ 30 साल रहे, दोनों स्थानों के वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त हैं। योग सहज लगता है, पर लगेगा उनका जो लगाएंगे, व्यर्थ में रहेंगे उनका थोड़ा योग लगेगा, उन पर ये वाइब्रेशन कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ड्रिल करके सोना आज आत्मा और परम धाम में, तो बड़ा मजा आएगा, और मैं मालिक हूँ ये संकल्प ले लेना। ओम शांति।
भर लीजिए, शांति से भरे।